वत्सपठनेतिपतिम् सशूद्रसतमतास्याम् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसि राजन्यो जगते पतिः वत्सपठनेतिपति सशूद्रसतमतामियात् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसि राजन्यो जगते पतिः वत्सपठनेतिपति सशूद्रसतमतामियात् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसि ब्राह्मण जगति पतिः शूद्र सतमतामियात् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसि राजन्न जगति पतिः वत्सपठनेतिपतिः सशूद्र सतमतामियात् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसि राजन्न जगति पतिः वत्सपठनेतिपतिः सशूद्र सतमतामियात् माताएं ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसि राजन्न जगति पति सर्पठानिधिपति सशूद्र सदमतामियात् शब्दार्थ ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसि आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्त हुआ राजन्न राजसि जगतिपति संसार का राजा वैश्य वैश्य वर्ण पठन पढ़ने से बीटपति पशुओं का स्वामी सात हो जाता है शूद्र श्रमिक वर्ग सतमताम माँ भक्त का पद यात प्राप्त करता है। अनुवाद यदि कोई पृथ्वी महाराज के गुण को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य हो तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि शूद्र होता है तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। कृपया दोहराइए यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। और यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों को तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि शूद्र होता है तो वो उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है कि अपनी स्थिति का ध्यान न रखते हुए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। चाहे मनुष्य अकाम हो सकाम हो अथवा मुख काम हो उसे भगवान की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की किसी भी क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होती है। भक्ति युग विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य सिद्ध हो सकता है। इस श्लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख है, किंतु यह समझना आवश्यक है कि यहाँ इन चार का उल्लेख उन कुल में ही उत्पन्न लोगों से है। चाहे कई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वैश्य अथा शूद्र मात्र श्रवण कीर्तन से उसे सिद्ध प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण कुण में जन्म वाला अंतिम रूप से ध्येय नहीं है, उसमें ब्राह्मण की शक्ति होनी चाहिए, जैसे ब्रह्मतेज कहते हैं। उसी प्रकार राजा परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, इसमें संसार में शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। उसी प्रकार वैश्य के रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, उसके पास हजारों पशुओं व गाय होना चाहिए और उसे अन्य वैश्य के ऊपर शासन करने के योग्य होना चाहिए, जैसे कि वृंदावन में नंद महाराज ने किया। नंद महाराज वैश्य थे, जिनके पास 9 लाख गायें थे और अनेक गोपों तथा ग्वाल बालों के ऊपर शासन करने थे करते थे। शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने के तथा भगवान एवं भक्तों के लीला के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मण से भी बड़ा बन सकता है। ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्य राजन जगतिपति वैश्य पठनीट पति सत्शूद्र सदमतामियात। अम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मज्जं ददाति सपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैश्रवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सवधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिण वंशा कल्पतरु वच्च कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेव वैष्णवेव नमन। नमो महाबद्धनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्मातकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितौ गौड़दय पुष्पवंतौ चित्रसंदौ तमानुदौ। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुत महाराज का ये पवित्र प्रसंग सभी की भगवत धाम जाने के लिए ये प्रेरणादायक हैं। तो प्रातःकालीन भगवत कक्ष में उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवी बृंदगुम में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ कि प्रथम महाराज का भगवत धाम को गमन कैसे प्रकार हुआ, आप धारावाहिक हिसाब से सुनते आ रहा है। आज का जो श्लोक में श्लोक का अनुवाद में बहुत महत्वपूर्ण व गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना हुआ है और प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखते हैं। अपनी स्थिति का विचार ना करके भक्त बनना चाहिए। अब भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके यही बात पुष्टि करते हैं कि मनमना मद्भक्त मज्जा धीमा नमस्कार। तुम कोई तपस्या का बात नहीं बतलाए उन्होंने, मैं मेरा भक्त बन जाओ और मेरा पूजा करो, मेरा को नमस्कार करो। यहां भी प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि अपना स्थिति, मतलब हम कौन से कुल का है, कौन से जात का है, कौन से परिवार है, कौन से देश का है, स्त्री भविष्य आचार्य बनना, कोई स्थिति का विचार ना करके भक्त बनना चाहिए। क्योंकि ये भक्त बनना ही हमारे जीव का कर्तव्य बनता है। ये चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख है कि हम कोई भगवान का भक्त बने और ना बने, उनका दास बने और ना बने, कृष्णदास कविराज बताते हैं कि सभी मेरा दास है। तो पृथ्वी महाराज ने बहुत हाट बाट से राजस्व शासन किए एवं अंतिम समय में ये प्रदर्शित किए कि ये शरीर कैसे छोड़ना है। ये पंचभौतिक शरीर को ये पंचभूत में उन्होंने एकाकार कर लिए एवं मन बुद्धि अहंकार को भगवान का श्रीपाद पद्म में भगवान का पाद पद्म को ध्यान करते हुए उन्होंने भगवत धाम को लौट गए। और माता अर्ची वो भी पतिव्रता धर्म को निभाए, बहुत बड़ा है और दृष्टांत उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। और भगवत धाम जाने का बाद जो देवता लोग देख रहे थे अर्ची माता को कि अर्ची महारानी को कि अपना पति का चिताग्नि में उन्होंने कैसे शरीर त्याग दिया, ये आदर्श है। आदर्श राजा प्रथम महाराज भी थे, वो आदर्श रानी भी अर्ची थे। जो उच्च लोगों का जो बासिया है उन्होंने उनका गुणगान कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर प्रपात बताते हैं कि कुछ भी विचार ना करके हमको भक्त बनना चाहिए। और भक्त का क्या काम होता है, ना भगवान का गुणगान करना चाहिए, रूप का चिंतन करना चाहिए एवं उनका ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनका वंदन नमन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ प्रश्न उठेगा कि अरे महाराज का गुणगान क्यों करेंगे, अरे ये साधारण महाराज नहीं थे। हमारे जो असंख्य अवतार है उसमें छह प्रकार जो अवतार है उसमें सत्यावस अवतार में पृथ्वी महाराज आते हैं। तो ये भगवान का गुणगान करना ये जीव का भक्त का प्रवृत्ति है। और प्रभुपाद बताते हैं क्या और ना जीवन में किसी क्षेत्र में उसको विजय प्राप्त होती है, ये भगवान का गुणगान करने से, भगवान का गुण श्रवण करने से। और आगे बताते हैं विशेष श्रवण और कीर्तन जो नवदा भक्ति का नौ अंग है उसमें पहला वाला है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। और पृथ्वी महाराज कौन से अंग को पालन किए थे, अर्चन का। और हमारे जो 64 अंग है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने प्रणन किए हैं, ये 64 अंग से जो 5 अंग मुख्य है उसमें एक अर्चन भी आता है। और जिन लोग वृंदावन में रहते हैं ये 5 अंग तो ऐसे पालन हो जाता है, साधसंग भागवत श्रवण एवं नाम कीर्तन एवं विग्रह अर्चन। ये जो विग्रह अर्चन, और यही नहीं समझना चाहिए कि जो पुजारी लोग है मंदिर में उनका ही हो रहा है। भगवान का जो 8 प्रकार का विग्रह का उल्लेख है, चित्रपट भी आता है। इन लोग का पास विग्रह है तो ठीक है, नहीं तो चित्रपट है उसमें जो हम अर्चन करते हैं वो अंक पुष्टि करती है। तो हम लोग को विशेष करके श्रवण का अंक गुरुत्व देना चाहिए। आ श्रवण कैसे और किससे करना चाहिए ये भी शास्त्र पुष्टि करता है। वैष्णव धारा में एवं परंपरा धारा से एवं प्रामाणिक आचार्य से श्रवण करना चाहिए, नहीं तो पद्म पुराण प्रमाण करते हैं क्या ना, अवैष्णव मुखद गृणम पूत हरि कथामृतम श्रवण नैव कष्ट एवं सर्पचिष्ट जथापय। कोई दूध में कोई जहरीला सांप मुख डाल दे वो दूध अमृत का जो शक्ति नहीं रहेगा, विष से परिणत हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यदि वैष्णव परंपरा से प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं करते हैं तो हमारे ऐसे होगा। और परीक्षित महाराज जैसे तेजस्वी व राजर्षि ये श्रवण अंकु ही अपना लिए, उससे उनका आर सिद्धि प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी मात्र कीर्तन किए, राम प्रामाणिक आचार्य से और श्रवण का जो तरीका दिया हुआ है उसी भाव से श्रवण करेंगे तो हमारे फल प्रसू होगा। नहीं तो जैसे भीड़ में सांप रहता है ऐसे ही ये श्रवण कान इसे खाली रहेगा। इसीलिए भागवतम पुष्टि करता है कि सुनुता सुकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन, पूर्ण रूप से श्रवण करना चाहिए। आज श्रवण करने का बाद क्या है ना, उसको अपना जीवन में निभाना चाहिए, आचरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अनुकरण और अनुसरण दो बात है, महाजन जन गतस्य पंथा। इसलिए महाभारत प्रमाण करता है तर्क प्रतिष्ठा सुतय विभिन्न नशा बुर्सी जतम मथन भिन्नम, भगवत तत्व निहित गुआया महाजन जन गतस्य पंथा। तर्क में ये भगवत तत्व को तार्किक दार्शनिक से श्रवण करने से ये भगवत वस्तु प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक है ऋषि दूसरा का जब मत भिन्न नहीं होता है उसको ऋषि में नहीं कहा जाता है। इसलिए हम भिन्न भिन्न मत का जब श्रवण करेंगे तो हम क्या भटक जाएंगे। भगवत तत्व निहित गुहाया, ये जो भगवत तत्व वो गुहा के अंदर गुफा के अंदर गोपनीय वस्तु है, इसको श्रवण करेंगे कैसे ना, महाजन जन गतस्य पंथा, ये प्रामाणिक आचार्य से। आप प्रामाणिक आचार्य से हम जब श्रवण करते हैं ढंग से तो हम कीर्तन भी ढंग से कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, सिद्धांत हम पर गलत रूप से स्थापित कर देंगे और जो सुनने वाला का भी नुकसान आ रहा है, जो बोलने वाला का तो पहले नुकसान हो चुका है। इसीलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि आप एक अंधा को आप अंधा का हाथ पकड़ लिया तो वो अंधा क्या करेगा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, वो पहले गिरेगा आ रहा हो आपको गिरा देगा। इसलिए बहुत सावधान होना बरतना चाहिए इस श्रवण का अंक। और कीर्तन तब कर सकते हैं तो ढंग से श्रवण करेंगे। और प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई ही वर्णाश्रम व आश्रम का जरूरी नहीं है, क्योंकि हनुमान ने कौन से सभ्य जाति में जन्म लिए थे? बा विदुर जी ने भी, विभीषण, प्रहलाद महाराज, ये आचार्य जनों को पुष्टि करते हैं कि भक्ति किसी भी कुल में, किसी भी स्थिति में और किसी भी परिवार से हम कर सकते हैं, किसी भी स्थिति से कर सकते हैं। और बताते हैं कि किसी भी हम वासना लेके अकाम मुख्य काम, ये प्रभुपाद यहां पर बताते हैं, अकाम हो असकाम हो, मुख्य काम हो, हम मुक्ति पाने के भी यदि इच्छा करके रखे भगवान का शरण में जाते हैं तो वह हमारे, अरे भगवत धाम जाने के लिए ये पथ सुगम हो जाता है। क्योंकि ब्रज में जो गोपांगनाएं थे भगवान को काम वासना लेकर उन्होंने भजन किया करिए थे, और सबसे बड़े भक्त हिसाब में उनको गिनाई जाता है। किसी भी बहाना से तीव्रना भक्ति जुगे न जजते पुरुष परम, हम सकाम भाव में आओ, सकाम भक्त उसको हो, बताया जाता है कि भगवान का भक्ति भी करे, प्रतिपदा में कुछ मन में चाह रहता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बता दिए कि चतुर्विधा भजन्ते मा जाना सुकृति अर्जुन, ये चार प्रकार का भक्त मेरा शरण में आते हैं। लेकिन हम देखते हैं शास्त्र अनुसार कि जिन लोग शरण में आए किसी बहाना से भगवान का, लेकिन जब तपस्या किए तपस्या में उनका सिद्धि लाभ हुआ, अब भगवान उनको वर देने चाहे ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज ये साधारण स्थान के लिए ना तपस्या किए और भगवान को 6 महीना में संतुष्ट कर दिए। भगवान जो अपना सम्मुख में प्रकट हो गए शंख चक्र पद गदा पद्मधारी विष्णु रूप में, बल्कि बेटा तुमको कौन से वर चाहिए? बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्यों? मैं तो कांच का टुकड़ा के लिए आया था और हीरा मिल गया मेरे को। लेकिन भगवान बोले देखो ध्रुव, कि हमारे नाम में फिर बदनाम होगा, क्योंकि ऐसे पहले भी ही बहुत बड़े दार्शनिक और नास्तिक लोग आए, हमारे भगवत्ता को अस्वीकार नहीं किए, और आज तुम ये नन्ना से बाला के 5 साल में आके तपस्या किया, हमें तुम्हारे तपस्या संतुष्ट हूँ और मैं बोर देना चाहता हूँ, और तुम बोर नहीं लोगे तो हमारे नाम में फिर बहुत बड़ा बदनाम होगा, इसलिए ये इनाम स्वीकार कर लो। एक शर्त से उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि माया में हम ना प्रभावित हो, तो भगवान को 36,000 साल तक राज्य करने के लिए ये वर प्रदान कर दिए। इतना ही नहीं, बोले अंतिम समय तुम हमारे धाम को चले जाओगे, इसलिए बिना फिक्र से भगवान का शरण में जाना चाहिए। इसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, सड़ंगा शरणागति हैवे जहार, तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जब तक हम शरणागति पूर्ण रूप से नहीं है तब तक भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। देश जाति अपना पोजीशन और पद मर्यादा, इसलिए चैतन्य भागवत प्रमाण करता है, रूप मद बल मद विद्या मद जहत विसर्जन दिया भक्ति पथे हन, सभी को जलांजलि देके सबको परित्याग करके आप भक्ति में लग जाइए, तब तुम्हारा सिद्धि लाभ करने के लिए सुगम होगा। क्योंकि ये भगवत भक्ति का भगवत प्रेम जीव का हृदय में सत विद्यमान है, उनको जगाना है। कृष्ण प्रेम निद्य सिद्ध साध्य कबु न है, श्रवण आदि सुदचिते करे उदय। आर ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम भगवत भक्ति जीव का हृदय में विराजमान है, उसको जगाना है। कैसे? ना श्रवण आदि सुजचिते करायो दे, इस श्रवण से ही ये भगव भक्ति हमारे जागृत हो सकता है, अन्यथा निष्फल भवेत। अरे कोई भी उपाय से ये भगव भक्ति हम जागृति नहीं कर सकता, सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। अरे क्या सिद्धि? अष्ट सिद्धि, अणिमा लघिमा प्राप्ति काम बसाईता प्रकम्म। बिल्लू मंगल ठाकुर बताते हैं कि भक्त में पर डालने मात्र से ही धर्म अर्थ काम मुक्त ये चतुर्वर्ग फल प्राप्त हो जाता है। आ मुक्ति देवी स्वयं दरवाजा का खड़ा हो जाते हाथ जोड़ करके, मैं क्या है तो आपको सहायता करूं, इतना बड़े बात लग दिए उन्होंने। ये विश्वास होना चाहिए हम, क्योंकि धर्म करने से ही अर्थ प्राप्त होता है, और अर्थ प्राप्त होने से ही हम कामना वासना को चरित्रार्थ कर सकते हैं। काम ये नहीं समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष का जो हो संसार का है उसको ही नहीं, हमारे और भी जो इच्छाएं में कामना है उसको हम पुष्टि कर सकते हैं। काम मुख्य अंतिम समय में, क्योंकि हमारे भगवत गीता प्रमाण करता है मुख्य संन्यास जो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या प्रमाण दिखाइए, उन्होंने पंचम पुरुषार्थ जो भगवती भक्ति व कृष्ण प्रेम को उन्हें पुष्टि किया। चलो इसीलिए हमको बहुत सावधान से भक्ति करना चाहिए। और प्रभुपाद उल्लेख करते हैं, कोई राजा कर परिवार में ही जन्म लिया है लेकिन उनका पास क्षमता नहीं शासन करने के लिए, आजकल जगत में जैसे राजा लोग हैं, क्योंकि अपना परिवार अपना कंट्रोल में नहीं है तो राज्य को क्या शासन करेंगे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं लेकिन ब्रह्म तेज व ब्रह्म शक्ति नहीं है, जो परीक्षित महाराज मृगा के लिए गए थे उनको प्यास लगा था, पानी जातना किए समी ऋषि से, लेकिन उन्होंने कोई ही प्रत्युत्तर नहीं किए क्योंकि भगवान का ध्यान में है, वो मग्न थे। राजा उनका गला में सर्प डाल दिया। एक खबर जो ना पुत्र का जो मित्र लोग सुने और बता दिए ऋषि श्रृंग को, तो उन्होंने कुछ भी बात विचार नहीं किए क्योंकि उनका पास ब्रह्म तेज व ब्रह्मांड शक्ति का भरा पड़ा था। ये पहले बार इन्होंने उपयोग किए, बात विचार ना करके उन्होंने क्या कर दिए ना, आज से 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाए। किसका? ना पिताजी का जो गला में जिन्होंने मृत सर्प डाले थे, ये ब्रह्म तेज देखिए। लेकिन वो ब्रह्म तेज ये परीक्षित महाराज का मृत्यु का कारण नहीं बना। यदि ब्रह्म तेज का प्रदर्शन नहीं किए होते तो आज हम नित्य भागवत सेवाया नहीं होता, क्योंकि ये भगवान का ही व्यवस्था था। क्षत्रिय कुल में भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने अपना क्षत्रिय शक्तियां कैसे प्रदर्शन किया, और विचारधारा देखिए। आज कल जमाना में आप कितना नेट में भेजिए, ड्राफ्ट भेजिए, फेसबुक में भेजिए, बाप खुद जाके मिलने चाहिए, मंत्री मिलना मुख्यमंत्री से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्षेत्रीय हिसाब में राज्य शासन किए करते रामचंद्र भगवान। कुत्ता का भी विचार किए उन्होंने, और हम आजकल वोट तो दे दिए लेकिन अब मंत्री की पता नहीं, नेट में देख सकते हैं, नहीं तो उनका हारो पता मिलना ही बहुत मुश्किल है। क्षेत्रीय हिसाब में भगवान रामचंद्र कैसे राज्य शासन किए एवं आदर्श कैसे दिखला, ये देखिए, ये क्षेत्रीय का एक गुण है। इसलिए भगवान क्षेत्रीय कुल में आए, और वैश्य संप्रदाय में भी भगवान आए गोपाल बालक रूप में। और उनको एक क्षमता होना चाहिए वैश्य को, जैसे नंद महाराज का उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने, उनका 9 लाख गाये हैं और दूसरा वैश्य का साथ भी और संबंधित रहकर उनका ऊपर शासन किया करते थे। ये शासन करने से ही नहीं होगा, कृष्णदास कवराज बताते हैं कि चारि वर्ण श्रम यदि कृष्ण नहीं भजे सुधर्म करिया से वो रौरव पड़ी मजे। हाँ, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, शूद्र का तो कोई शासन करने का अधिकार, बिजनेस करने का और कोई भक्ति करने का अधिकार ही नहीं, तो उनका अधिकार क्या है ना, ये तीन आश्रम को सेवा करे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, और जो शूद्र हुआ तो वो उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। भगवान का ये दिव्य गुण व लीला का श्रवण करने से उसका ये फायदा हो जाता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान पुष्टि करते हैं कि माही पार्थ व्यवस्थिता तेह भी सो पाप जुनय स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रम तेह भी जानती पराम गति। और शूद्र कुल में व शूद्राणी से जन्म लेकर नारद मुनि भी प्रदर्शन कर दिए और विदुर जी भी प्रदर्शन कर दिए कि शूद्र रूप में हमें जन्म ग्रहण करने का बाद भी हमको भक्ति कितना बलवती होती है भगवान का लीला। और खास करके चतुर कुमार का सेवा किए नारद मुनि ने और कितना बड़ा भक्त बन गया। इसीलिए भगवान सेवा से भक्त का सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पार्वती एवं शंकर भगवान का जो कथन में है कि आराधना सर्वेशाना विष्णु आराधना परम, सभी आराधनाओं से भगवान का आराधना श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरा लाइन में बताते हैं तदीयानम संवर्चनम, किनका ना भक्त का है। क्योंकि ये भक्त का इतना क्षमता होता कि भगवान को भी दिला सकते हैं। क्यों, हम गजराज प्रसंग में सुने हैं, मगरमच्छ ने इंद्रदमन महाराज को जो उनका हाथी शरीर मिला था तो मैं सूंड में नहीं पकड़े, पूंछ में नहीं पकड़े, उन्हें कहां पर पकड़े थे, पैर में। क्योंकि ये जानते थे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए उनको पैर में पकड़े। और हमारे आचार्य लोग प्रमाण क्या करते हैं, भक्त पद धोलियार भक्त पद जल भक्त भक्त से ही तीन साधन रे बल। ये हम जितना भी साधन करते हैं इसके साधन का बल क्या है, क्षमता क्या है, शक्ति क्या है ना, भक्त पद धूली और भक्त पद जल, शुद्ध भक्त का चरणामृत महत अभिरे पाद अभिरे शेख, जो जब जब तक नहीं हो रहा है तब तक हर भक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और भक्त भुक्त से ही तीन साधन रे बोल। महाप्रसाद नारद मुनि ने ये चतुर कुमार का माध्यम से उनको प्राप्त हुआ, उनको ऐसे पद प्राप्त हुआ कि बिना भिसा पाठसूर से बिना टिकट से भगवान का नाम लेते हुए ये 14 ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे थे। इसलिए भक्ति करने के लिए कोई जाति और समाज देश का कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भी स्थिति में कर सकते हैं, कोई भी स्थिति में। और गुरुत्वपूर्ण है कि ऐसा करने से जीवन में किसी भी क्षेत्र से उसे विजय प्राप्त होती है। ये भगवान का दिव्या गुण का इतना क्षमता है, उनका लीला का, उनका परिकर का, उनका धाम का। क्योंकि ये प्रमाण है कोई भी व्यक्ति वृंदावन धाम का नाम जब सुन जाता है वो चौक जाता है, उनको अभिलाष रहता है जीवन में कभी भी मैं वो वृंदावन जाऊंगा, क्योंकि ये भगवान का नित्य निवास स्थान है। एवं उनका धाम का नहीं इतना शक्तिशाली नहीं है, उनका परिकार का भी, उनका लीला का भी, क्योंकि जब गिरी गोवर्धन का लीला हम श्रवण करते हैं, अरे 7 साल का एक नन्हा से लड़का 7 दिन धर के यह गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, तो स्वाभाविक ही ये मानसपट में अभिलाषा हो जाता है कि कभी भी मैं उनका दर्शन करूंगा, और दर्शन करके भगवत धाम का जाने का रास्ता तैयारी हो जाता है। इसलिए कोई भी शंका ना करके हमको भक्ति में लगे रहना चाहिए, कोई भी आशा से ली, कोई भी बहाना से। तो आज और पवित्र दिवस है कि देवानंद पंडित जी का तिरुभाव तिथि है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का लीला में बहुत बड़े प्रवक्ता हिसाब में माना जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का समय में ये देवानंद पंडित जी कुलिया में निवास किया करते थे, और उसी समय चैतन्य महाप्रभु का कृपा से उन्होंने बहुत बड़े वक्ता का हिसाब में, प्रवक्ता हिसाब में गिनाए जाते थे। लेकिन और भी कुछ दोष त्रुटि भी था उनका अंदर, कि एक बार श्रीवास जी ने उनका भगवत कक्ष में आए थे, क्यों जेहेतु वो उन्होंने बहुत बड़े भागवत व्याख्याकार थे, और आसपास का जितना भी विद्यार्थी और लाइन लगा के रहते थे उनका टोली में। तो एक दिन श्रीवास जी ने वहाँ आए भगवत श्रवण करने के लिए, भागवत का जो श्लोक उन्होंने ऐसे सुंदर ढंग से उच्चारण किया करते थे, तो श्रवण मात्र से उनका सात्विक विकार उत्पन्न हुआ, जो कि हम मंगल आरती में गाते हैं, रोमांच कंपा सुतरंग भाज। उनका साथी की बगार से न रोने लगे, बिलखने लगे, लेकिन उनका जो चेले लोग देखे कि अरे ये तो हमारे श्रवण में व पढ़ाई में व्यवधान डाल रहे हैं, ये तो पागल होगा, क्योंकि उन लोग इतना उच्च स्तर में नहीं थे। इसलिए उनको क्या किए है ना, सारे सिस्टम मिलकर बोले इनको बाहर धकेल के रखते हैं, तो उनको बाहर छोड़ दिए। और उन्होंने वहां से फिर अब आवास में आ गए, लेकिन कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु उस समय प्रकट नहीं हुए थे, उनका आविर्भाव नहीं हुआ था। उसका बाद जब वो भगवान का आविर्भाव हुआ, उदा महाप्रकाश लीला जो प्रदर्शन किए, तो एक दिन सभी का भूत वर्तमान भविष्य का आरव वार्ता भगवान बता रहे थे, पूर्व जन्म में आप कौन थे, अभी कौन है, बाद में कौन होगा, अब आप क्या क्या किए थे, ये सब बता रहे थे। तो श्रीवास को चैतन्य महाप्रभु बोले, श्रीवास जी आपको याद है आप एक दिन देवानंद पंडित का टोली में गया था भगवत कथा श्रवण करने के लिए, उनका शिष्य लोग आपको और वहाँ से निकाल दिए थे, क्यों कि तुम्हारा सत्य की विकार हुआ है भगवत श्लोक सुनने मात्र से। अरे सुखदेव गोस्वामी ये भागवतम का श्लोक श्रवण करते ही उनका ये निर्विशेष गांठ खुल गया, जब भगवान का दया का कथा सुने तो फिर शिष्य लोग को पूछे कि ये मंत्र कहाँ से लेके आए हो, तो शिष्य लोग को बता दिया तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे 18,000 मंत्र है, ये भगवान का दया का व गुण का प्रभाव कैसे देखिए। तो भगवान का भक्ति का प्रभाव देखिए, श्रवण श्लोक श्रवण मात्र से सत्य की विकार हो रहा है। तो हम तो कोई बहुत तो लंबा समय से प्रसाद ग्रहण करते आ रहा है, कीर्तन करते आ रहा है, नित्य भागवत सेवाया भी हो रहा है, श्लोक सुनते ही हमारे कोई रोमांचक कंपा से हो रहा है, किनका हो रहा है, हाथ उठाएंगे? होता होगा है, लेकिन आप प्रकट नहीं कर रहा है, क्योंकि महाजन लोग ये भी प्रतिबंधक दे के रखा है कि अपन भजन कथा ना कहिबे जथा तथा, प्रकट नहीं करते हैं आप। लेकिन जैसे फूल फूट जाता है उनका खुशबू फैल जाता है, फिर भी सबका सामने हमारे प्रभुपाद जी ने भी मना किए है कि आपका साथी की विकार उत्पन्न हो गया, उससे आप सावधान रहिए, क्योंकि सर्वसाधारण आपका ऐसे भाव का समझ नहीं पाएंगे और आपका चरण में अपराध कर बैठेंगे और भक्ति में उनका रुकावट आएगा, इसलिए उसको भी छुपाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु उसको बता दिए तो उन्होंने फिर दोबारा उन्हें भी लिखने लगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां से फिर चल दिए सार्वभौम जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका जो महेश्वर नाम का पिताजी थे उन्हें भी बहुत बड़े विद्वान थे, उसका टोली में फिर ये देवानंद पंडित ने फिर प्रवचन लगा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसी रास्ता होकर पर कुर्द से गुस्सा से उधर से गए और बताते हो क्या, बोले अरे तुम कौन से पंडित हो, क्योंकि उन्होंने भक्ति का कभी भी व्याख्या नहीं कर देते, ये धर्म अर्थ काम मुख्य का ही सीमित कर देते, क्योंकि जो वो बताता है कि मैं भक्त हूं और भागवत को जानता हूं तो कुछ नहीं जानता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, स्वयं विद्यमान है। जो छह प्रश्न पूछे थे ऋषियों सनक ऋषि के माध्यम से सुत गोस्वामी को, उसमें एक प्रश्न था जब भगवान जब सुधाम गमन करेंगे ये धर्म किसका शरण में रहेगा और किसका शरण खरण में रहेगा, तो भगवान ये सुखदेव गोस्वामी का मुख से बतलाए थे बा व्यासदेव का लेखनी से लेखनी का माध्यम ने रचना कर दिए थे कि पुराण अर्क अधुना देता, ये स्वर्ज रूपक ये भागवतम का ग्रंथ ये भगवत भक्ति के लिए और भक्त के लिए भौतिक जगत में विद्यमान रहेगा, और इसको नहीं व्याख्या करके और धर्म अर्थ काम के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, ये कौन से भगवत व्याख्याकार है। जब सुना देवानंद पंडित ने उनसे पर चक्कर आ गया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये साधारण ब्राह्मण परिवार पे एक सन्यासी है, क्यों चैतन्य महाप्रभु उस समय अपना लीलाचलपुरी में लीला किया करते थे, आज सभी भक्त लोग आए चैतन्य महाप्रभु के पास, सभी को आशीर्वाद दिए, कुशल समाचार पूछे, लेकिन देवानंद पंडित को कोई भी पूछे नहीं, क्योंकि उनका प्रवक्ता का नाम बहुत प्रचार था ना, उसका एक अहंकार गर्व था और श्रीवास पंडित का चरण में अपराध हो गया था, ये अपराध सबसे खतरनाक है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता छिंडे जाए बा सुखी जाए पाता, ये भक्ति लता हमारा सुख जाएगा ये वैष्णव अपराध से, क्योंकि हमारे आचार्य लोग का प्रमाण है कि हरिस्ताने अपराध है ताहे हरिनाम, तुम्हाताने अपराध है नहीं कर परित्राण बना ही कर डान, भगवान का चरण में अपराध हो गया तो हम निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करेंगे तो अपराध खंडन हो जाएगा। भगवान अपराध तो लेते ही नहीं है, यदि भी ले लिए तो उनका नाम माध्यम में से ही अपराध मार्जना हो जाएगा। लेकिन भक्त का आचरण में यदि अपराध हो जाएगा, जैसे दुर्वासा जी ने 14 ब्रह्मांड आर घुमाना पड़ा दुर्वासा जी को, और भक्त महाराज अम्बरीश साल भर बिना पानी पिए रहे, और उनको वैसम माना जाता है जो अपराध माफ कर देते हैं। तो आज इसे लीला से हम सुनते हैं कि जब वो श्रीवास आचार्य का चरण में अपराध हुआ है तो देवानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु कुछ भी पूछ नहीं रहते, और संकुचित होकर और दूर से खड़ा होकर देख रहे थे। ऐसे समय आया जब बक्रेश्वर पंडित 72 घंटा वो नाच सकते हैं कंटिन्यू, यहाँ तो हमारा 24 घंटा कीर्तन है, लेकिन 24 पर 72 घंटा चैतन्य महाप्रभु का साथ इन्हें कीर्तन करते थे। तो ये बक्रेश्वर पंडित एक बार कीर्तन के बाद नृत्य किए, तो उसी समय ये देवानंद पंडित भी वहाँ आए थे, और देखे कि धीरे धीरे जन समागम और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इतना भीड़ हो गया कि नाचने में व्यवधान पैदा हो गया। तो देवानंद पंडित ने क्या किए ना, एक बेत्र लाठी लेके वहाँ पर उपस्थित हुए और नाचने के लिए कीर्तन के लिए व्यवस्था कर दिया। सुचंद से बक्रेश्वर पंडित कीर्तन और नाच सकते हैं, कोई घंटा तक उन्होंने कीर्तन और नृत्य किए। उसका बाद फिर अपना भावावेश को संवरण किए, तो ये सेवा किए भक्त का, तो चैतन्य महाप्रभु उनको फिर आशीर्वाद किए, क्योंकि ये भक्त का चरण में अपराध कारण उनका ये भक्ति बंधा हुआ था। थे तो प्रतीत ये जगत में, लेकिन ये भक्त के समाज में प्रवक्ता हिसाब में उन्होंने प्रतिष्ठित नहीं थे, और चैतन्य महाप्रभु को कृपा से उन्होंने देवानंद पंडित नाम से भी नामित हो गए, और आज उनका ये तिरुभाव तिथि है। आज एक चलिए एकादशी है, आप लोग एकादशी कर रहे हैं, आज बंजली एकादशी ना एकादशी है आज है, लेकिन बंजली महाद्वादशी हम लोग काल करेंगे। तो आज जो पौष महीना का एकादशी तिथि में ये देवानंद पंडित ने ये लीला संवरण किए, क्योंकि भक्त का भगवान का आविर्भाव तिरुभाव प्रकट अप्रकट बराबर होता है। और ये देवानंद पंडित पूर्व लीला में वह भगवान का कृष्ण लीला में नंद महाराज के पुरोहित रूप में विद्यमान थे, जो कि और भागुरी ऋषि नाम से नामित थे। ये भागुरी ऋषि ही चैतन्य महाप्रभु लीला में देवानंद पंडित से के रूप से परिचित थे। तो हम सभी लोग उनका आचरण में प्रार्थना करेंगे कि हम भी ही जैसे उन्हें चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त किया प्रवक्ता का हिसाब में, हम भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रवक्ता के हिसाब से प्रसिद्ध ना हो सकते हैं, लेकिन भक्ति हमको प्राप्त हो। देवानंद पंडित की, श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी पुरुषोत्तम जी, कोई कमेंट? आप लोग का आशीर्वाद है। महाप्रसाद की। ये हमारे जो भक्त चरित अंग है ना, गोडी मठ में हमको मिले है लीला उसमें मदलला में आपको आएगा।
कीर्तन जब कर रहे थे उन्होंने,
हाँ उसके किए उसका लीला चैतन्य भागवत में भी होगा। चैतन्य होगा थोड़ा होगा, अरे भक्त का जो चरित है उसमें बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम हो रहा है इधर थोड़ा तो मैं